अरपा रेडियो डॉट कॉम की प्रस्तुति भारतीय इतिहास
वाचक स्वर तूलिका। अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव।
पिछले पाठ में अंग्रेजों की शासन की स्थापना के विषय में हमने जाना, अब इस पाठ में उनके शासन का भारतीय जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हम जानेंगे। सन 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापार करना था। उन्हें भारत से कपड़ा, मसाले आदि खरीदने के लिए अपने देश से सोना चांदी आदि लेकर आते थे। वे भारतीय सामान को विदेशों में बेचकर काफी मुनाफा कमाते थे, मगर अपने देश का सामान भारतीय बाजारों में नहीं बेच पाते थे। इस एक तरफा व्यापार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी आलोचना होने लगी। कंपनी पर दबाव डाला गया कि वे व्यापार के लिए धन की व्यवस्था भारत से ही करें। प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद बंगाल पर उनका अधिकार हो गया। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी वसूल करने का अधिकार भी उन्हें ही प्राप्त हो गया। इससे उन्हें अपने व्यापार के लिए जरूरी धन भारत से ही मिलने लगा। उन्हें अपने प्रशासनिक खर्चों तथा साम्राज्य विस्तार के लिए जरूरी धन की भी चिंता नहीं रही। उस समय भूमि किसी भी शासक के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत था, इसलिए अंग्रेजों ने भी मुख्यतः भूमि कर पर ही अपना नियंत्रण बनाना प्रारंभ किया। अंग्रेजों की कृषि नीति। अंग्रेजों ने शुरुआत में स्थानीय तौर पर प्रचलित कर व्यवस्था को ही चलाए रखा। बाद में उन्होंने कर निर्धारण और संग्रहण की अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई। ये भारत के अलग अलग प्रदेशों की सामाजिक व्यवस्था व शासन की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई थी। ये जमींदारी, रैयतवाड़ी व महलवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं थी। पहले दौर में अंग्रेजों द्वारा लगान की वसूली के लिए ठेकेदारी करने के अधिकार को नीलाम किया जाता था। जो सबसे अधिक पैसा जमा करने का वादा करता उसे यह अधिकार दिया जाता था। ठेकेदार का यह प्रयास होता था कि वह जल्दी से जल्दी किसानों से ज्यादा लगान वसूल करे। ठेकेदारों को केवल अपने लगान की वसूली से मतलब रहता था। वे किसानों के हित अहित का ध्यान नहीं रखते थे। इसलिए अब अंग्रेजों ने एक दो वर्ष की ठेकेदारी के स्थान पर 5 साल बंदोबस्त शुरू किया। उन्हें लगा कि लंबे समय तक ठेका देने से किसानों के शोषण में कुछ कमी होगी। अब वे नए ठेकेदारों की तुलना में पुराने जमींदारों को लगान देने लगे। इस तरह लगान वसूली की नीति में बार बार परिवर्तन होते रहे। स्थायी बंदोबस्त। अंग्रेज सरकार ने सन 1789 में बंगाल प्रांत के राजस्व वसूल करने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाया। कॉर्नवालिस ने फैसला किया कि भू राजस्व की वसूली जमींदारों के हाथ हो। जमींदार भू राजस्व ना दे सके तो उनकी जमींदारी जब्त करके उसकी जगह नए जमींदार को बिठा दिया जाएगा। बार बार भू राजस्व निर्धारण से बचने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789 से 1790 में देय भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को 10 साल के लिए जमीन का मालिक मान लिया। अब वे जमीन की खरीद बिक्री कर सकते थे और लगान ना पटाने पर किसानों को जमीन से बेदखल भी कर सकते थे। कंपनी शासन के लिए भू राजस्व आमदनी का प्रमुख स्रोत थी। इस व्यवस्था से कंपनी को आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो गया। इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि लगान को कृषि के विकास और उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने या घटाने से जोड़कर नहीं देखा गया था। इसलिए जमींदार तो निश्चित लगान वसूलते रहे, पर किसानों या सरकार को इससे अधिक फायदा नहीं हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था का मूल आधार लगान का किसान के साथ सीधे करार करना था। यह तय किया गया कि कृषि उत्पादन में हुए खर्च को निकालकर जो बचेगा उसका 50% भू राजस्व होगा। शुरुआत के दिनों में फसल और उसके मूल्य के घटने बढ़ने से राजस्व का कोई तालमेल नहीं था। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी प्रांत में 30 वर्षों के लिए यह बंदोबस्त लागू किया गया। किसानों के साथ सीधे करार के बावजूद इस व्यवस्था से किसानों का शोषण होता रहा। महलवाड़ी व्यवस्था। सन 1833 से 1843 ईस्वी के बीच अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की, जिसमें पूरे गांव, जिसे महल कहते थे। महलवाड़ी व्यवस्था। सन 1833 से 1843 ईस्वी के बीच अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की, जिसमें पूरे गांव, जिसे महल कहते थे, से लगान का बंदोबस्त किया जाता था। अर्थात गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इसमें रैयत बंदोबस्त की तरह कृषि खर्च और किसानों के भरण पोषण का खर्च निकालकर जो बचता था उसका लगभग आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था। इस व्यवस्था को पंजाब, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था। अंग्रेज अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की लगान व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को अनेक तहसील में बांट दिया और तहसीलदारों की नियुक्तियां की। प्रत्येक परगने में लगान वसूल करने के लिए अमीर और पंड्या राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की गई। अंग्रेज अधिकारियों ने मराठा प्रशासन के समय प्रचलित पटेल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गौटिया पद का सृजन किया। उस समय गांव के गौटिया वर्ष में 3 किश्तों में लगान वसूल किया करते थे। लगान का निर्धारण जमीन के क्षेत्र के आधार पर किया जाता था। गौटिया अपने गांव से लगान वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करते थे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई इन नई व्यवस्थाओं से किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लागू प्रत्येक लगान की दर बहुत ऊंची थी तथा अनिवार्य थी, जिन्हें कृषि की आय से चुका पाना मुश्किल होता था। इसलिए किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों से कर्ज भी लेना पड़ता था। नियत समय पर कर्ज न पटा सकने पर उनकी जमीन साहूकारों द्वारा हड़प ली जाती थी। परिणाम स्वरूप किसानों की हालत बहुत खराब हो गई एवं शासन के प्रति असंतोष की भावना पनपने लगी। इस प्रकार कुछ स्थानों पर किसानों ने कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह भी किया। दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी। भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश किया गया एवं उन पर भारी कर भी लगाया गया। इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं को तट कर एवं चुंगी कर से मुक्त रखा गया था, इससे वे सस्ती हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकार एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकी। भारतीय कारीगर अपने व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां उजड़ गईं। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। फलतः कंपनी शासन के प्रति उनमें असंतोष पनपने लगा। वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। भारत के जंगलों में पाए जाने वाली मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेल की पटरियां बिछाए जाने के लिए किया जाता था। साथ ही इंग्लैंड की मिलों के लिए भी लकड़ियां भेजी जाती थीं। इससे वनों की कटाई में तेजी आ गई। जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो झूम खेती करते थे, उन्हें पेड़ काटने पर रोक लगा दी गई। इससे उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई। वे अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का भरपूर दोहन किया। उनका उद्देश्य इन कारखानों में उत्खनन कर भारत के बाजार में माल बेचना था, ताकि उन्हें अधिकाधिक लाभ मिल सके। उन दिनों ढाका, कृष्णनगर, बनारस, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद आदि वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, चटगांव, ढाका जहाज निर्माण के केंद्र थे। अंग्रेजों को भारत एवं इंग्लैंड में अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने भारत के विभिन्न बंदरगाहों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण एवं सुधार कार्य किया। भारत में रेलवे की शुरुआत एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास से देश के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए एवं उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी। उन्हीं दिनों सन 1853 में भारत में टेलीग्राम सुविधा प्रारंभ हुई एवं डाक व्यवस्था में सुधार कार्य हुए। शिक्षा पर प्रभाव। कंपनी शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण सहित धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। भारतीय शासकों ने पाठशालाओं, मकतबों को सरकारी जमीन दान पर दी थी। अंग्रेजों ने यह जमीन उनसे छीन ली। उन्होंने नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इनमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 में चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र और राष्ट्रीय आंदोलनों को मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा। मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ किया गया, जहां सह शिक्षा की व्यवस्था थी, जो 20 वर्षों के बाद हाई स्कूल बना। आज हम इसे प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। रायपुर में 1882 में राजकुमार कॉलेज प्रारंभ हुआ। जिसमें देशी राजाओं के राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी। इनकी परीक्षाएं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन दिल्ली से संचालित होती थी। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में ही 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। प्रेस का विकास। भारत में अंग्रेजी, बंगला, हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे, जिसका जनता पर व्यापक असर होने लगा। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से 1878 में भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मिलन, प्रभाकर और इंदु प्रकाश थे। इससे जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। छत्तीसगढ़ में प्रेस का विकास। पंडित माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इन्होंने सन 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा से प्रकाशित होना शुरू हुआ। सन 1889 से 90 में राजनांदगांव रियासत अपना राजकीय समाचार पत्र प्रकाशित किया करता था, जिसका नाम प्रजा हितैषी था। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी, छत्तीसगढ़ विकास, उत्थान, आलोक, महाकौशल, कांग्रेस पत्रिका, आजकल, छत्तीसगढ़ केसरी आदि उस समय के मुख्य समाचार पत्र थे। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना और जागरूकता आई।
अरबा रेडियो.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।